मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज तारीख है 8 मई 2015 और दिन है शुक्रवार। आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं फिरदोस अंसारी, आसनसोल वेस्ट बंगाल से हैं, और आसनसोल वेस्ट बंगाल से ही हैं सुरेश कुमार मंडल। फिर है विंद्रा सेन राय, आप इलाहाबाद से, और आनंद कुमार पाल फैजाबाद से। फिरदोस, सुरेश, विंद्रा और आनंद, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी क्लासेस होने में काफी दिन बाकी हैं, लेकिन दिन 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 करते करते सारे के सारे दिन खत्म हो जाते हैं और पता भी नहीं चल पाता। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ये न सोचें कि अभी बहुत दिन बाकी है, बावजूद इसके कि बहुत दिन बाकी हैं, आपको हर दिन का उपयोग करना है, ऑडियो गाइडेंस से लगातार संपर्क बनाए रखना है और अपनी मानसिक मजबूती को लगातार पानी देते रहना है, उस पर धार चढ़ाते रहना है, ताकि जब तक आप यहां आए तब तक इतने मजबूत हो सकें, इतने धारदार हो सकें कि ज्यादा से ज्यादा यहां से लेकर जा सकें। मित्रों, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जहां तक एकेडमी का सवाल है, एकेडमी देने के मामले में कहीं कोई कसर उठा नहीं रखेगी। मित्रों, मैंने कहा कि आज शुक्रवार है, इसलिए कहा क्योंकि बट नेचुरल है कि शुक्रवार के बाद शनिवार होगा और शनिवार के बाद रविवार। आपको मालूम है कि पिछली बार से ही हम लोगों ने थोड़े से परिवर्तन किए हैं, तो मुझे सबसे पहले उनकी आपको सूचना देनी है। पहली बात तो ये कि जो सैटरडे को आपको ऑडियो गाइडेंस मिलेगा, लेकिन वो डिफरेंट तरह का मिलेगा। उस ऑडियो गाइडेंस में आपको प्री के एग्जाम की कैसे, अब जो समय बचा हुआ है उसमें क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, प्री एग्जाम की किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, उसको लेकर के मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। तो ये ऑडियो एज इट इज कल के afeis.com पर आप सबके लिए अवेलेबल रहेगा, और नो डाउट कि जो प्रेस क्लिपिंग्स हमेशा की तरह कल भी मिलेंगे, लेकिन कल की प्रेस क्लिपिंग्स में एक थोड़ा सा फर्क ये होगा कि वो अंडरलाइन किए हुए नहीं होंगे। ऐसा जानबूझकर किया जाएगा ताकि आप खुद अपनी तरफ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर सकें। मित्रों, देखिए, अंततः करना आपको ही होगा, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। मैं केवल एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूं, कितना दिखा पाता हूं कितना नहीं दिखा पाता हूं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप उसे कैसे लेते हैं और उस रास्ते पर चलते चलते कहां तक पहुंच पाते हैं। चलना आपको ही पड़ेगा, इसीलिए जानबूझकर कल की जो क्लिपिंग्स होंगी वो अंडरलाइन नहीं की जाएंगी। और मित्रों, नेक्स्ट डे उसके सैटरडे के बाद फिर संडे होगा। संडे के लिए दो सूचनाएं हैं। पहली तो ये कि हमेशा की तरह ही योजना और कुरुक्षेत्र के जो आर्टिकल्स होंगे वो नॉलेज सेंटर पर सभी के लिए अवेलेबल होंगे, जो क्लिपिंग्स नहीं कहें, जो आर्टिकल्स होते हैं वो अवेलेबल होंगे, और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के उनके मेल पर एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा जिसका सब्जेक्ट राज्यसभा से संबंधित होगा। मालूम है मित्रों कि पिछले सप्ताह एक क्वेश्चन मैंने दिया था, 27 अप्रैल को एक क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए 200 शब्दों में मेंस के पैटर्न पर। उसमें यही दिया हुआ था कि पिछले 2.5 दशकों का हमारा अनुभव ये बताता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें राज्यसभा के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। इसी तरह का कोई प्रश्न था। इस प्रश्न को आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या कंटेंट होगा, कैसे कहना चाह रहा है, उसको लेकर के उस ऑडियो में चर्चा की जाएगी, स्पेशल ऑडियो में। और ये फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स के मेल पर ये भेजा जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं वे अपने मेल को एक्सेस करें। मित्रों, ये दो सूचनाएं थी। फिर मंडे को हम हमेशा की तरह फिर मिलेंगे। अब दोस्तों मैं आता हूं अपने मोटिवेशन वाले पार्ट पर, और मैं कल घोषणा कर चुका हूं कि जो क्वांटम फिजिक्स को लेकर हम चर्चा कर रहे थे उसकी चर्चा को मैंने कल ही समाप्त कर दी। हालांकि जब कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई तो उन्हें उसमें बहुत मजा आ रहा था और वो चाहते थे कि इस पर और बात की जाए, और उस पर तो मैं पता नहीं कितने घंटे बात कर सकता हूं मित्रों, क्योंकि मेरा बहुत पसंदीदा विषय है। और केवल पसंदीदा विषय ही नहीं है बल्कि मेरे दिल के करीब है, और अनुभव के दौर से भी मैं बहुत से समय पे उसे उस दौर से गुजरता भी हूं। लेकिन आप लोगों से जो फीडबैक मिल रहा था, मैं देख रहा था कि अब मोटिवेशन वाले पार्ट को लेकर के अब इस वाले खासकर क्वांटम फिजिक्स वाले को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे। शायद चीजें कुछ वेग लग रही होंगी, कुछ अविश्वसनीय सी भी चीजें लगने लगती हैं, और ये होता है। इसमें कतई आपका कोई उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब इसको जल्दी से खत्म करना चाहिए और ऐसे प्रैक्टिकल पार्ट पर मैं आऊं जो सीधे सीधे इस उम्र में आपसे रिलेटेड हैं, आपके व्यवहार से रिलेटेड हैं, आपके जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड हैं, और कहीं ना कहीं आपके सिविल सर्विस से भी उनका संबंध है। तो ये सोचते हुए मैंने कल ही उसे समाप्त कर दिया है, और अब फिर हम नए तरीके से जो पहले हम करते रहे हैं उसे आधार पर अब हम लोग बातें करेंगे। तो मित्रों मैं शुरुआत करता हूं फिर से पिछले कुछ दिनों में जो मुझे मेल मिले हैं उसी से मैं आज अपनी बात शुरू करता हूं। मित्रों जैसा कि मैंने अभी चर्चा की थी कि मैं आप लोगों को मेंस के पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं। उस क्वेश्चन को लेकर के मेरे पास पहले भी कुछ मेल आए कि उसका इंग्लिश वर्सन प्रोवाइड किया जाए। मैंने एश्योर किया था लेकिन मैं प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन मैंने एकदम एश्योर नहीं किया था, यह था कि हां मैं देखता हूं। इस बीच में मैंने देखा कि लगातार मेरे पास इसी से संबंधित रिक्वेस्ट आते रहे कि उसके इंग्लिश वर्जन भी प्रोवाइड किए जाए। मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे लगा ही नहीं बल्कि ये सही भी बात थी कि कुछ स्टूडेंट जो पहले इसी बात को रख चुके थे, रिक्वेस्ट कर चुके थे, वही बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि प्रोवाइड किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। नो डाउट मित्रों मैं आप लोगों की इस जरूरत को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, मैं पूरा सम्मान भी करता हूं, लेकिन मैं प्रोवाइड नहीं कर सका हूं। उसके कुछ रीजंस भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन मैं उन पर नहीं जाना चाहता। इसके आधार पर मैं जो बात डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है दोस्तों कि यदि किसी को सच में इसके इंग्लिश वर्जन की इतनी जरूरत है तो उसको लग रहा है कि जब तक इसकी इसका इंग्लिश वर्जन नहीं मिलेगा तब तक ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मुझे चाहिए। अगर सच में इतनी बड़ी जरूरत है तो आप खुद सोच करके देखें, और यदि आप लंबे समय से ऑडियो सुन रहे हैं या मेरी क्लास में आप आ चुके हैं और मेरे विचारों को यदि थोड़ा सा भी जानते हैं या मुझे थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप सोच करके देखें कि यदि सच में आपकी इतनी जरूरत है तो क्या यह इतनी बड़ी समस्या है जिसका समाधान, जिसका निराकरण आप अपने स्तर पर नहीं कर सकते। तीन लाइन, अधिकतम 3.5 लाइन का वो प्रश्न है और हिंदी में है, ऐसा नहीं कि वो फ्रेंच में है, क्योंकि अगर फ्रेंच में होगा तो आपको फ्रेंच जानने वाला ढूंढना मुश्किल होगा कि कहां से हम फ्रेंच जानने वाला ढूंढे जो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके, लेकिन हिंदी वालों के साथ ये दिक्कत नहीं होगी। क्या ये काम आप किसी और से नहीं करवा सकते, किसी और की मदद नहीं ले सकते? मान लीजिए कि चलिए आप छोटी जगह पर होंगे जहां अंग्रेजी जानने वाले लोग नहीं, हिंदी जानने वाले लोग तो बहुत हैं लेकिन अंग्रेजी जानने वाले लोग नहीं हैं। तो फिर मैं सेकेंड लेवल पर आता हूं कि आप मुझे मेल भेजते हैं, इसका मतलब है कि मेल करना आप जानते हैं। तो क्या आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है, आपका कोई ऐसा परिचित नहीं है जिसके पास आप हिंदी का ये वर्जन भेज सकें मेल के जरिए और रिक्वेस्ट करें कि मुझे मेल से इसका अंग्रेजी वर्जन भेज दीजिए? चलिए मैं और तीसरे उपाय की बात करता हूं। यदि आप मेरे ऑडियो गाइडेंस को सुन रहे हैं तो यह पूरा का पूरा ऑडियो गाइडेंस हिंदी में होता है, आप देख ही रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं तभी आपको पता लगा ये क्वेश्चन है। और आप चाह रहे हैं कि उसकी अंग्रेजी आपको मिले, बिल्कुल मिलना ही चाहिए, आपकी जरूरत है, मैं आपकी जरूरत को 1% भी नकार नहीं रहा हूं। मैं तो इसके माध्यम से जिंदगी की बात कर रहा हूं, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, है ना, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं तो उसके माध्यम से व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके मन में, आपकी आत्मा में सच पूछे तो इस बात को बैठाना चाहता हूं कि समझिए कि व्यक्तित्व क्या है, इंटरव्यू क्या है, क्वेश्चंस नहीं है, वो समथिंग डिफरेंट है, उस डिफरेंट को जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेरा ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं तो ऑलमोस्ट समझ भी रहे हैं, कमोबेश समझ ले रहे हैं, आपका मीडियम इंग्लिश हो सकता है, दूसरी लैंग्वेज हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन काम चल रहा है, आप मैं क्या कह रहा हूं आपके समझ में आ जाता है और वो बहुत है, सफिशियंट होता है ये पढ़ाई के लिए। इसका मतलब है कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको भी आप समझ तो रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो क्या आप खुद ही उसका अंग्रेजी वर्जन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलिए मैं मान सकता हूं कि उसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसके आपको अर्थ नहीं मालूम है कि ये शब्द क्या है, लेकिन आप ठीक 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 समझ ले रहे हैं और ये बिल्कुल आपका कहना सही होगा यदि आप कहेंगे कि सर, जो क्वेश्चन को समझने के लिए हम हमें उसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके सही अर्थ मालूम होने चाहिए। यू आर 100% करेक्ट, आपको सही शब्द के अर्थ मालूम होने चाहिए। तो क्या अब वो जो हिंदी का शब्द है उसकी अंग्रेजी की आपके पास डिक्शनरी नहीं है? और अगर डिक्शनरी नहीं है तो आपके हाथ में आज के विज्ञान ने इतना बड़ा अस्त्र, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर दिया है कि पूरी दुनिया को आप लेकर के चल रहे हैं, उसमें पता नहीं कितने कितने इंसाइक्लोपीडिया भरे पड़े हैं, उसमें आपके डिक्शनरी भी है, उस डिक्शनरी को करके देख लीजिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है। मित्रों, देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व इट, बहुत से रास्ते हैं इस समस्या का निराकरण करने के लिए, तो फिर वो उपयोग क्यों नहीं किया गया? मुझसे ही बार बार क्यों कहा जा रहा है कि इसकी इंग्लिश प्रोवाइड कीजिए? मैं देखिए, अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं इसकी इंग्लिश क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है मित्रों, दो चीजें हैं। नंबर एक, इसके इंग्लिश वर्जन की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जरूरत होती तो मैंने बताया कि आपने इसकी समस्या का समाधान कर लिया होता। ये केवल आप उत्तर नहीं लिखना चाह रहे हैं। सच बात यह है कि बहुत ही डीपली सबकॉन्शियस लेवल पर आप उत्तर नहीं लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तर लिखने में बहुत दिक्कत होती है। मित्रों, हम लोग इस संकट से गुजरे हुए हैं। जब मुझे भी कोई आर्टिकल लिखना होता है तो मैं उसे टालने की कोशिश करता हूं कि यार ना लिखना पड़े, ना लिखना पड़े, क्योंकि इतना परेशान करता है वो आर्टिकल, क्योंकि वो चीज पब्लिक होने जा रही है, वो अखबार में छपेगी, उस पर चर्चा होगी, उस पर लोग उसको पढ़ेंगे, तो डर लगता है पब्लिक चीज करने में, तो टालते रहते हैं, यार आज जरा मूड नहीं हो रहा है, तो आज जरा ये व्यस्तता है, तो आज जो है थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो कल कर लेंगे, कल इत्मीनान से करेंगे। हर में होता है, मुझ में भी होता है, तो मैं इसीलिए इस बात को समझ पा रहा हूं। अगर आप लिखना नहीं चाह रहे हैं लेकिन आपको लिखना भी है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं लिखना तो चाहिए लेकिन चाह नहीं रहे, अब किया क्या जाए, इन दोनों के साथ तालमेल कैसे बैठाया जाए, चाहने और न चाहने के बीच में तालमेल कैसे बैठाया जाए, तो हम एक लॉजिक चुन लेते हैं अपने लिए कि यार इसका अंग्रेजी मिल जाए तब हम लिख लेंगे। तो आप अपनी जो बॉल है वो दूसरे के कोर्ट में डाल दीजिए कि लो बेटे खेलते रहो, तुम इस बॉल में खेलते रहो, अब जब आएगी तब हम देखेंगे, हमारी तरफ जब आएगी कि इसके साथ क्या करना है। मित्रों, ये हर मामले में होता है, मैं इसके माध्यम से व्यक्तित्व के इसी पॉइंट की चर्चा करना चाह रहा हूं, ये हर मामले में होता है जिसको मैंने अभी एक उदाहरण के तौर पर लिया है। अदरवाइज आप उसको कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें कोई एक लॉजिक चाहिए जिसके माध्यम से हम इस कर्म को करने से बच सकें और वो लॉजिक हमें मिल गया। अदरवाइज मित्रों, जो व्यक्तित्व है, जो ताकतवर व्यक्तित्व है, जो एक सिविल सर्वेंट का व्यक्तित्व होना चाहिए, वो ये है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ये मेरे लिए एक अवसर है कि मैं अब इस हिंदी का सामना करके इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करूं, समझूं। इसी बहाने आप अपने उस दोस्त से बात कर लेंगे, इसी बहाने आप डिक्शनरी पलट लेंगे, इसी बहाने आप धीरे धीरे दो भाषाओं पर आपका नियंत्रण होता चला जाएगा। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत से अवसर हैं इसमें। मित्रों, क्या आपको सच में एक ऐसा सिविल सर्वेंट चाहिए? आप अपने जिले में एक ऐसे कलेक्टर को पसंद करेंगे जब जरा सा भी थोड़ी सी समस्या आए और उस समस्या को दूसरे पर टाल दे, उसका निराकरण न कर सके? क्योंकि आपको यही करना है, सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपको यही करना है। और अगर आप अपने व्यक्तित्व को यहां नहीं खोलेंगे तो कब खुलेगा, कैसे खुलेगा? आपको क्या लगता है कि कलेक्टर बनने के बाद खुल जाएगा? इस भ्रम में मत रहिए, कभी ऐसा नहीं होता है। यही अवसर है, बल्कि सच पूछे तो खुलने के लिए देरी हो गई थोड़ी सी, लेकिन इतनी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी वक्त है। तो प्लीज समझिए कि जब आपके सामने कोई समस्या आती है, कोई संकट आता है, कोई बाधा आती है, तो इसे आप दुख और परेशानी में कन्वर्ट मत कीजिए। इसे आप अपने लिए एक सुनहरा अवसर समझिए, जो भगवान ने, प्रकृति ने, समाज ने, व्यक्ति ने, जो भी आप नाम देना चाहें, आपको दिया है। इसका सामना करो और मजबूत बनो। तो मित्रों, आज के इस मोटिवेशनल पार्ट में मैं इतनी चर्चा करूंगा, वक्त हो चुका है। अब मैं आता हूं आज की आकाशवाणी, कल की आकाशवाणी न्यूज पर। और कल आकाशवाणी न्यूज में अपने पास ढेर सारी बातें हैं चर्चा के लिए, और हम उन्हीं पर बातें करेंगे, क्योंकि अखबारों के में कुछ खास नहीं है। मित्रों, सबसे बड़ी जो अभी घटना है आपके सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है भारत बांग्लादेश सीमा संशोधन विधेयक। आपने देखा कि राज्यसभा में पारित हो गया और इसी तरीके से वो लोकसभा से भी पारित हो गया, यानी कि अब सब कुछ हो चुका है। लेकिन चूंकि मित्रों, इसमें अब आप देखिए कि मैं आपको प्री की भी तैयारी करा रहा हूं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य इन्वॉल्व हैं, क्योंकि प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईएएस में भी इसको पूछा जा सकता है आपके सिविल सर्विस में, कि भारत बांग्लादेश सीमा से प्रभावित राज्यों का समूह बताइए। नीचे आपके चार ऑप्शन दे देंगे और एक एक ऑप्शन में चार चार राज्य दे देंगे, तो तीन राज्य तो परफेक्ट होंगे, एक राज्य कंफ्यूज करने वाला होगा। केवल उसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें चारों सही होंगे। अब आपको भूल भुलैया बना करके जाल में उलझा देंगे। तो आपको बहुत क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि ये चार राज्य कौन कौन से हैं। मित्र, अभी आपको बहुत अच्छे से याद है, इसका चैलेंज समझ लीजिए, क्योंकि अभी मामला ताजा ताजा है और हम भी कई दिनों से बात कर रहे हैं। आप अखबार में भी पढ़ रहे हैं, न्यूज में भी सुन रहे हैं, चैनल्स पर भी देख रहे हैं, डिस्कशन में भी आ रहा है, एडिटोरियल में भी पढ़ रहे हैं। तो अभी तो ताजे ताजे आप फटाफट बता देंगे, यार इसमें याद करने में क्या है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? लेकिन एक महीने बाद, क्योंकि परीक्षा तो आज नहीं है, परीक्षा सवा तीन साढ़े तीन महीने बाद है, तब क्या करेंगे? क्या याद रह जाएंगी? नहीं रहती हैं। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा। तो ये संकट ना आए, इसके लिए आप क्या करेंगे? क्या कोई मैकेनिज्म है? यस, मैकेनिज्म है, मगर बहुत सॉलिड मैकेनिज्म है और ये होना चाहिए। कुछ नहीं, आपको एक काम करना है, केवल पांच मिनट की तकलीफ करनी है। और वो तकलीफ क्या है? नक्शा उठाइए, एटलस उठाइए या नक्शे के सामने चले जाइए और आप बांग्लादेश को देखिए कि अच्छा ये बांग्लादेश है, और फिर देखिए कि बांग्लादेश से सटे हुए हमारे देश के राज्य कौन कौन से हैं। क्योंकि अब ये तो नहीं होगा कि बांग्लादेश तो हमारे ईस्ट में है और उनको गुजरात का कोई राज्य, गुजरात की कुछ जमीन दी जा रही होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जब आप मैप पर देखेंगे तो आपको एकदम दिखाई पड़ जाएगा कि वो चार राज्य कौन कौन से हैं, और आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। और इसलिए भी बैठ जाएगा क्योंकि आप पहली बार मैप नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी आप कई बार देख चुके हैं, तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा और फिर आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसमें जो चार राज्य हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। और मित्रों, इसके ऊपर और जितनी भी बातें थी और सिविल सर्विस में जो चीजें पूछी जा सकती थी, उस पर मैं कल विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, इसीलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आज दो क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर में मैं इससे रिलेटेड डाल रहा हूं, एक दैनिक भास्कर में न्यूज फॉर्मेट में, एक काफी बड़ा था उसमें से मैं छोटा सा हिस्सा डाल रहा हूं कि कितनी एकड़ जमीन कौन देश किसको देगा और कब 1974 में हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और वहां जो बांग्लादेश के जो थे मुजीबुर रहमान साहब, उनके बीच में एक समझौता हुआ था 1974 में, उसी का ये एक्सटेंशन है एक तरीके से, उसी का एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन है कहना चाहिए, उसको लेकर के क्लिपिंग्स है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक एडिटोरियल कमेंट किया है, बातें वही हैं जिसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं, अंडरलाइन मैंने जरूर कर दिया है, इसीलिए मैं इसे दोहराना नहीं चाहूंगा, आप ये देख लीजिएगा। मित्रों, अब मैं आता हूं जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट विधेयक है, वो है किशोर अन्याय विधेयक, शायद लोकसभा से शायद पारित हो गया है। इसमें दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और खासकर चूंकि बालकों से संबंधित है, और आपको मालूम है कि इस बार नोबेल प्राइज हमारे ही देश को मिला है कैलाश सत्यार्थी जी को, जो बच्चों के अधिकार और विस्थापन और पुनर्स्थापन इन सब से जुड़े हुए हैं, चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ये इशू हो जाता है। अब इस पर आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स देखिए आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि पहले भी आर्टिकल्स आ चुके हैं, इस इशू पर काफी बातें हो चुकी हैं, तो हो सकता है आगे न भी आए, क्योंकि इस बीच में काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज और आ रहे हैं। न्यूज में जो तीन चार चीजें थी वो हमें मालूम हो जानी चाहिए। पहला तो आप जानते ही होंगे कि एज जो है 18 से घटा करके उसको 16 कर रहे हैं, कि 16 ईयर्स की एज से ही उसको किशोर माना जाने लगेगा। दूसरा उसमें ये बताया है मित्रों कि जो फैसला जो होगा अपराध के बारे में, कि अपराध किस तरीके का है, वो न्यायालय की बजाय किशोर न्याय बोर्ड होगा वो करेगा कि किस तरह का अपराध है, तो एक अच्छी चीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल एकदम बराबर भी रख दिया गया, और ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्हें पहले की तरह ज्यों का त्यों छोड़ा गया है, क्योंकि इस पर हम लोग पहले भी थोड़ी सी बातें कर चुके हैं, तो मैं केवल न्यूज को आधार बना करके ही थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। जो थर्ड पॉइंट जो न्यूज में मेंशन किया था, मैं समझता हूं दैट इज वेरी वैलिड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इज दैट कि जब तक वो लड़का 21 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, चाहे फिर उसका अपराध कितना भी संगीन क्यों ना हो, जेल नहीं भेजा जाएगा, उसको एक तरह से सुधार गृह में रखा जाएगा ताकि उसको सुधारा जा सके, जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि बट नेचुरल है मित्रों, जेल में तो किस किस तरह के कैदी होते, किस किस तरह के अपराधी होते हैं नहीं मालूम, अगर बच्चा कम उम्र का बच्चा है, अगर उनके बीच चला जाएगा, उनसे मिलेगा, बातचीत करेगा, उनके साथ रहेगा, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर की प्रवृत्तियां फिर हो सकता है कि उसी तरह की हो जाए, तो हम एक तरह से अपने देश के एक नागरिक को सुधरने का अवसर देने की बजाय एक तरह ऐसी स्थिति प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा परिवेश दे रहे हैं जहां उसके बिगड़ने की आशंकाएं ज्यादा है, तो ये भी एक प्रोविजन किया गया है, तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, ये आपको मालूम होने चाहिए, ये कह लीजिए कि इसके बेसिक्स है। तीसरी बात जो मित्रों जो न्यूज में मुझे इम्पॉर्टेंट लगी वो है ब्रिटेन में चुनाव हो रहे हैं, कल मतदान हो गए हैं, रात के 10 बजे मतदान खत्म हो गए हैं, अब धीरे धीरे हम लोगों को पता लगेगा कि क्या है। देखिए ब्रिटेन के चुनाव में मैं आपको अभी केवल दो तीन बातें कहना चाहूंगा, इस बीच में काफी आर्टिकल्स भी आ रहे थे, छोटी मोटी खबरें आ रही थी, न्यूज में नहीं थी, मैंने उसकी चर्चा नहीं की क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, लेकिन हां जो स्टूडेंट अभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटेन में चुनाव हो रहे हैं। देखिए सिर्फ ब्रिटेन की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरे देशों में अगर चुनाव हो रहे होंगे उनकी बातें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव इसलिए मायने रखता है क्योंकि हमारे देश से जुड़ाव रहा है, हमारे यहां की जो लोकतांत्रिक पद्धति है, अगर हम अभी मॉडर्न उसकी बात करें, अदरवाइज तो भारत की बहुत पुरानी संस्कृति रही है लोकतंत्र की, तो वो ब्रिटेन के सिस्टम से हमने लिया है, जब ब्रिटिशर्स यहां आए तो धीरे धीरे वो इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व किया उन लोगों ने, 1935 का जो अधिनियम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा फाउंडेशन बना, तो इस आधार पर ब्रिटेन का चुनाव मायने रखता है। दूसरी बात इसलिए भी मायने रखता है मित्रों कि इस बार ये माना जा रहा है कि ब्रिटेन के चुनाव में वहां जो हमारे भारतीय हैं वो बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे। मुझे ध्यान आ रहा है कि कोई मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो ब्रिटेन में जो भारत के लोग रह रहे हैं उसमें जो मतदाता हैं भारतीय, ब्रिटेन में अप्रवासी भारतीय कह लीजिए, तो लगभग 50 क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं जिसमें ये प्रभावित करेंगे, मतलब ये किसी को जिता भी सकते हैं, किसी को हरा भी सकते हैं, अगर एकजुट होकर इन्होंने मतदान किया तो, और डेफिनेटली वो ऐसा करेंगे भी, तो इसके कारण जो भारत वहां जो रहने वाले भारतीय हैं वो बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पर आ गए, मतलब आप कह लीजिए कि उनमें अब एक राजनीतिक उनका जो वजन है वो स्थापित हो रहा है। न्यूज में उस समय आर्टिकल्स में ये भी आ रहा था कि वहां जो ब्लैक हैं एशिया दूसरे जो एशियाई देश हैं उनका भी प्रभुत्व धीरे धीरे ब्रिटेन की राजनीति पर बढ़ रहा है। मतलब अब ब्रिटेन की राजनीति ऐसी नहीं रह गई है जो पूरी तरह से गोरे लोगों के हाथ में ही हो और वो जैसा करना चाहेंगे वैसा ही करेंगे, और मैं समझता हूं यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति भी है। तीसरी बात मित्रों की, ब्रिटेन के चुनाव में आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे या चुनाव के आज रिजल्ट्स भी आ जाएंगे तो देखेंगे कि दो पार्टियों के सबसे ज्यादा नाम लिए जाएंगे, वो हैं कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। वहां ये दो बड़ी सबसे बड़ी पार्टियां हैं, कभी कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में होती है तो कभी लेबर पार्टी सत्ता में होती है। जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे, खासकर फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे, जब ब्रिटिशर्स पूरी तरह से भारत पर शासन करने लगे, स्पेशली कह लीजिए कि परमानेंट स्थायी बंदोबस्त के बाद में 1765 के बाद में, तो आपको उसके बाद के इतिहास में आपको असल में कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी ये शब्द मिलेंगे। तो ये वहां की राजनीतिक पार्टियां हैं और वहां कौन सी पार्टी सत्ता में है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव भारत में वो कैसा करेंगे इस पर भी पड़ता था। जो लेबर पार्टी थी वो एक तरह से थोड़ी सी उदारवादी पार्टी थी, लेबर नाम से ही पता है कि भैया नहीं किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, थोड़े से उदार बनो। तो जब लेबर पार्टी होती थी तब भारत को ज्यादा लिबर्टी मिल जाती थी, ज्यादा चीजें मान ली जाएंगी, थोड़ी सा वो उदारवादी रुख अपनाती थी। लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो उतना उदार नहीं होती थी। तो ये सिम्टम्स आपको फ्रीडम मूवमेंट के दौरान मिलेंगे। तो खासकर मैंने इसकी चर्चा इसलिए की कि इस सिम्टम्स को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप जिस पीरियड को पढ़ रहे हैं उस पीरियड में अगर आपने ये समझ लिया कि ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी तो आप देखेंगे कि चीजों को समझने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। तो अब चुनाव हो चुके हैं मित्रों, अब रिजल्ट आएंगे, अगर कुछ ऐसी बात हुई जो चर्चा के लिए जरूरी होगी तो फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कल के न्यूज में मित्रों एक शब्द आया था, स्वतः संज्ञान। मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आप सब जान रहे होंगे लेकिन मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं, जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्वतः संज्ञान खासकर आए कि आपने देखा कि केरल में जो खेल प्राधिकरण है उसमें चार जो लड़कियां थी उसमें उन लोगों ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया जिसमें एक लड़की नहीं भी रही। हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए। तीन लड़कियां काफी बीमार हैं, जो भी है घटना इस तरह की है। तो इस पर वहां के ह्यूमन राइट कमीशन ने, जो मानव अधिकार आयोग है, उसने अपना स्वतः संज्ञान लिया है। इसी तरह का शब्द इसके ठीक बाद के न्यूज में पंजाब और चंडीगढ़ के न्यायालय ने भी लिया है, हाई कोर्ट ने लिया, स्वतः संज्ञान लिया। ये स्वतः संज्ञान क्या है मित्रों? स्वतः मतलब खुद, संज्ञान का मतलब है कि उसके बारे में जानकारी लेना। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अभी तक न्यायालय के सामने यह था कि न्यायालय उन्हीं विषयों को लेता था, उन्हीं विषयों पर अपनी राय देता, राय नहीं कहना चाहिए, निर्णय देता था जिस विषय के बारे में कोई उसके पास जाता था। अब जब आप कोई केस दायर करेंगे तभी न्यायालय उस पर कुछ बात कहेगा। स्वतः संज्ञान का मतलब अब हो गया है कि न्यायालय को यदि लगता है कि नहीं ये मामला बड़ा सेंसिटिव है तो खुद वो उसको इशू को ले सकता है। वो किसी की जरूरी नहीं है कि वो इंतजार करे कि कोई उसके पास आएगा तभी वो इस केस को टेकअप करेगा। ये अधिकार अब हमारे संविधान ने हमारे न्यायालय को दिए हैं। तो पंजाब और हरियाणा में न्यायालय हैं जो स्वतः संज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया, और केरल में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। तो अब वो प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि उसी मामले को टेकअप करेंगे जिसके लिए कोई उनके पास जाएगा। अगर उनको लगता है कि नहीं ये मामला राष्ट्रीय राष्ट्रहित में, समाज के हित में, संविधान के हित में है तो वो खुद भी उसमें दखल दे सकते हैं। मित्रों अंतिम छोटी सी बात है, वो ये है कि न्यूज में आपने सुना कि जो विनियोग विधेयक है, वित्त विधेयक है, वो राज्यसभा को वापस करने के लिए भेज दिया गया है। शब्द पर देखिए, राज्यसभा में ये मतदान नहीं होगा, इन्फॉर्म कर दिया गया कि भाई ये हम करने जा रहे हैं तो राज्यसभा उसको देखेगी करेगी और इसके बाद उसको लोकसभा के पास वापस भेज देगी, क्योंकि जो धन विधेयक होते हैं उन पर राज्यसभा को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। उसको केवल मात्र अधिकार इतना है कि ज्यादा से ज्यादा वो उसे 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है, फिर उसे वापस भेज देना पड़ेगा। और अगर नहीं वो भेजी, मान लीजिए भेजना भूल ही गए, तो फिर मान लिया जाएगा कि उसने भेज दिया, आप अपने पास रखे रहिए, जो आगे काम होगा वो होता रहेगा। तो मित्रों ये AIR न्यूज की बात थी। अब मैं अखबारों के क्लिपिंग्स पर आता हूं, विशेष क्लिपिंग्स नहीं है जिनकी मैं चर्चा करूं। एक बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है वस्तु एवं सेवा कर को लेकर के, इसमें इस विधेयक में जो कमियां हैं जो हमारे उद्देश्यों के विपरीत बैठेंगे उसकी चर्चा की गई है। हिंदी में है, मैंने अंडरलाइन किया है और इसमें जितने भी पॉइंट्स लिए गए इन सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और अभी पिछले दो दिनों में ही कर चुके हैं, इसीलिए मैं उसे मित्रों यहां रिपीट नहीं करने जा रहा हूं। जनसत्ता का भी है जीएसटी के ऊपर, ये आप देख लेंगे। दैनिक भास्कर में मार्क टली का एक आर्टिकल है, खासकर सुशासन होगा तो शहर बनेंगे स्मार्ट, गुड गवर्नेंस और स्मार्ट सिटी के ऊपर है। इसमें इन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं और प्रश्न उठाने का आधार केवल ये है कि एक तो भारत में गुड गवर्नेंस की स्थिति नहीं है तो स्मार्ट सिटी को कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया है कि हम स्मार्ट सिटी की तो बात कर रहे हैं लेकिन जो हमारे ऑलरेडी सिटी हैं उनका क्या होगा, उनको ठीक ठाक करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इस तरह से कुछ प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। लेकिन लिखा उन्होंने सरल तरीके से है, आपको पढ़ना चाहिए। और अंतिम आर्टिकल जो है वो बिजनेस स्टैंडर्ड का ही है दोस्तों, वो है बुनियादी विकास में नए बैंक की भूमिका को लेकर के, एनडीबी को लेकर के, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको आप अगर पिछले दो साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन में जो अभी बैंक बन स्थापित हो रहा है, इस तरह के बैंकों पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस दृष्टि से उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप देख लेंगे। तो मित्रों अखबारों के बारे में इतना ही, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। तो मित्रों पहले तो मैं दो मेल के उत्तर दे दूं, कई मेल आए हैं जो क्वेश्चन मैंने दो उसमें से बनाए हैं। पहला तो ये कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेल लिखे हैं कि वे यूपीएससी गए, जो स्टूडेंट इंटरव्यू देकर के बाहर निकले उनसे मुलाकात की, उनसे बातें की और सबने मुक्त कंठ रूप से दो बातें कही हैं। नंबर एक कि इससे उनको बहुत फायदा हुआ, तैयारी कैसे की जानी चाहिए इसको समझने में बहुत मदद मिली। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे हमें खुशी है कि उनके बारे में हम लोग जानते थे और ऑडियो गाइडेंस में ज्यादा से ज्यादा वो सारे इश्यूज कवर कर लिए गए थे। इसके लिए मैं उन विद्यार्थियों को जो वहां जा रहे हैं बातें कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि वो इस तरह की अपनी एक्टिविटीज को बनाए रखें, चीजों में पर एक्ट करना सीखें। और साथ ही मित्रों निश्चित रूप से कि ऑडियो में इश्यूज की चर्चा की जा चुकी है, निश्चित रूप से मुझे अपने प्रति आत्मविश्वास से भरता है, तो ये अवसर उन लोगों ने मुझे उपलब्ध कराया है कि मैं अपनी चीजों पर और ज्यादा भरोसा कर सकूं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। मित्रों कुछ मेल मेरे पास थोड़े से विचित्र किस्म से के प्रश्न को लेकर के आए हैं और वो मेल इस पर पहले भी काफी आए थे। वो ये है कि मेरी एज अब 29 साल की हो गई है लेकिन मैं आईएएस देना चाह रहा हूं तो क्या मैं अपनी डेट एज की डेट को घटा लूं, ये कर लूं फलाना कर लूं, और भी दो तीन इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो देखिए मेरी सलाह है कि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट न भी बनने जा रहा हूं तो इस तरह की चीजों को दिमाग में मत आने दीजिए। जो चीज बीत गई है बीतने दीजिए, अब जो चीज सामने है एक सही तरीके से जो रूल्स रेगुलेशन के तहत हैं, जो चीजें बिल्कुल फेयर होती हैं क्लीन होती हैं उसके तहत अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए, उसी के तहत जीवन में कोई चीज पाने की कोशिश कीजिए। हेरा फेरी करके बदलाव करके उससे कोई फायदा नहीं होगा, केवल इसलिए नहीं कि कभी पकड़े भी जा सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो हो ही सकता है, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आप तो जानते हैं कि आपने क्या किया है। ये चीज अभी आप जोश जोश में ये कदम उठा लेंगे लेकिन देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, स्पेशली आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज, जब आप 40 साल के हो जाएंगे तब यही चीज आपके दिमाग को कुरेदती रहेगी, आपको अपराध बोध से भर देगी, आपके जीवन की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ चूकने लगेगी। तो क्यों ऐसा काम करना, जो हो गया है होने दीजिए, अब जो सामने है उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए ना, कि ऐसा थोड़ी है कि ये चीज बीत गई तो अब कुछ करने को है ही नहीं। एक से एक चीजें, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी और खूबसूरत चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, आप कदम तो बढ़ाइए। तो मित्रों मैं इसकी कतई सलाह दे ही नहीं सकता, बल्कि सलाह ये दूंगा कि प्लीज डोंट डू दिस। मित्रों अब मैं अंतिम चरण पर सभी के प्रति धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेल लिखे हैं और इनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं सौरभ गिरधर, निधि रायकवाड़ छतरपुर से, राकेश कुमार जोरहाट असम से, पवन घाटशिला से, लव कुमार इंदौर से, रंजन कुमार सिंह पिलवाहा बिहार से, मोहम्मद इरफान मेवाती भरतपुर से, आशुतोष कुमार, अभिषेक त्रिपाठी वाराणसी से और नरेंद्र सिंह मनहास इंदौर से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, अब इस ऑडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल आपको फिर से एक ऑडियो सुनने को मिलेगा जो डिफरेंट इश्यू पर होगा। आप सब प्री की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं अगले साल करेंगे तो कोई बात नहीं। अब जो लगभग साढ़े तीन महीने का जो वक्त आपका बचा हुआ है, इसका आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये अपने अनुभव के आधार पर मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। वो कल आप लोगों को वो ऑडियो अवेलेबल होगा। तो अब इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और इजाजत दीजिए। नमस्कार।